لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات. اس سے بہتر صلوات پڑھی محمد والے محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ تحریم کی چھ شمارے کی آیت میں کہ اے صاحبان ایمان، تم نے سب سے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے بعد خود کو بچا لینے کے بعد تم نے اپنے خاندان والوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اس آگ سے بچانا ہے کہ تم یہ تصور مت کرنا کہ یہ آگ صرف اس دنیا کے گزر جانے کے بعد تمہیں جلائے گی، بلکہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس کی تپش، جس کی حرارت، جس کی لپیٹ اور جس کا ضرر جو ہے وہ تمہیں اس دنیا میں بھی پہنچے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، اگر کوئی انسان گناہ انجام دیتا ہے، اگر کوئی انسان برے اخلاق اور کردار کا حامل ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی سزا اور اس کا انجام اسے صرف اس دنیا میں بھگتنا پڑے گا کہ جس دنیا میں اس دنیا سے مر جانے کے بعد پہنچے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اچھے انسان کے لیے جنت اسی دنیا میں قرار دی ہے. اسی طرح سے پروردگار عالم نے برے انسان کے لیے دوزخ اسی دنیا میں قرار دی ہے. یعنی اس دنیا میں بھی تمہیں تمہارے برے اعمال کا نتائج، اس کی عاقبت، اس کے نتیجے کو بھگتنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی تربیت کروں یا میں تربیت نہ کروں، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں بھگت لیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم اچھی تربیت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں اسی دنیا میں مل جائے گا، اور اگر بری تربیت کرو گے تو بری تربیت کی عاقبت بھی تمہیں اسی دنیا میں بھگتنی پڑے گی. तो परवरदिगार कह रहा है कि तुमने सबसे पहले अपने आप को बचाना है, कु अनफुसकुम वाहलीकुम नार, सबसे पहले अपने आप को बचाना है और बाद में अपने घर वालों को बचाना है। किससे बचाना है? उस आतिशे जहन्नम से बचाना है कि जिसका ईंधन जो है वो खुद इंसान और पत्थर हुआ करेंगे। परवरदिगार आलम वाज़े पैगाम दे रहा है कि इंसानों इस दुनिया में जब तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की रंगीनियाँ जो है वो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद से गाफिल कर दें। गाफिल इंसान कितना जल्दी गाफिल होता है कि कुरान मजीद गुज़श्ता गुफ्तगू के मुकदमे में इस बात को कहा था कि परवरदिगार आलम ने 6000 आयतों में बार बार एक ही मौजू की तकरार की है। बार बार एक मौजू की क्यों तकरार की जा रही है? इसलिए क्योंकि परवरदिगार आलम इंसान को जाहिल नहीं समझता, बल्कि परवरदिगार इंसान को गाफिल समझता है। जाहिल वो होता है कि जिसे मालूम नहीं है। आपने बता दिया कि भाई खुरासान किसी को नहीं पता, कोई अंदरूनी सिंध अंदरूनी शहर से आया है उसे खुरासान नहीं पता। आपने बता दिया ये एड्रेस है, ऐसा खुरासान दिखता है, इस गली में मुड़ना है, उस सड़क पर आना है, खुरासान देख लिया, पता चल गया। अब इसकी जहालत ख़त्म हो गई, जहालत इल्म में तब्दील हो गई। अब पहले नहीं जानता था खुरासान को, अब उसने खुरासान को जान लिया। तो अब ऐसे ही इंसान को जाहिल नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये आलिम है, ये इल्म रखता है खुरासान का। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को एक चीज़ बता दी जाए, बता देने के बावजूद और जान लेने के बावजूद इंसान उसे भुला देता है। अब ये जो भुला देता है तो ऐसे इंसान को जाहिल नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसे इंसान को गाफिल कहा जाता है, ऐसे इंसान को गाफिल कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने इंसान को जाहिल से ज़्यादा गाफिल माना है, यानी इंसान जानता है, उसकी फितरत में हमारी तौहीद की आवाज़ है, उसकी तबीयत में हमारी खालिकियत की आवाज़ है, लेकिन वो इस आवाज़ को अपने गुनाहों के ज़रिए से भुला देता है। बस इंसान जाहिल से बढ़कर गाफिल है, और गाफिल है इसीलिए परवरदिगार आलम बार बार कह रहा है कि देखो इस दुनिया में गर्क ना हो जाना, इस दुनिया में गर्क ना हो जाना, इस दुनिया में हमारी नेमतों को भुला ना देना, इस दुनिया में ये भूल ना जाना कि तुम हमेशा यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि एक दिन तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होना है। बार बार इंसान को गाफिल समझ के परवरदिगार आलम ट्रीट करते हुए मौजूआत की तकरार कर रहा है। मौजू एक ही मौजू को मुसलसल रिपीट किया जा रहा है, मुसलसल मुकर्रर बयां किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान गाफिल है। अब आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में गफलत जो होती थी, ये नुक्ता यहाँ के लिए बड़ा मौजू है, वो ये कि पहले के ज़माने में इंसान जो गाफिल होता था वो मालूमात के फ़िक्दान की वजह से होता था। पुराने ज़माने के लोग गलतियाँ करते थे, वो क्यों करते थे? वो फेसबुक तो था नहीं, सोशल मीडिया तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो लोग जानते नहीं थे। पहले ज़माने लोगों की हलाकत फिकदान मालूमात की वजह से थी, मालूमात ना जानने की वजह से थी। लेकिन आज के ज़माने में इंसान की हलाकत, इंसान की गफलत का जो सबब है वो मालूमात का ना जानना नहीं है, बल्कि मालूमात का बहुत कसरत से होना है। जिस भी फेसबुक को उठाकर देखिए, जिस भी इंसान को उठाकर देखिए, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ मालूमात, इतनी मालूमात है कि उसे खुद नहीं समझ आता कि कौन सी मालूमात सही है और कौन सी मालूमात गलत है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं किबला फला मौलाना तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, फलाने ये कह रहे हैं, वो फलाने ये कह रहे हैं, मशरिक वाले ये कह रहे हैं, मगरिब वाले ये कह रहे हैं, तो इससे समझ आता है कि जानता है, लेकिन इस बहुत ज़्यादा जान लेने की वजह से ये हलाक हो रहा है। तो पहले के ज़माने के लोग फिकदान मालूमात की वजह से हलाक होते थे, लेकिन आज के ज़माने के लोग कसरत मालूमात की वजह से हलाक हो रहे हैं। फेसबुक उठाकर देखिए, हर चीज़ के बारे में आपको 10-10 राय मिलेंगी। कोई भी वाकया हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, कोई सियासी तब्दीली हो जाए, कोई सियासी हलचल हो जाए, कोई मजहबी रवादारी हो जाए, मजहबी खलीज हो जाए, तो हर वाक़े के बारे में 10-10 आ रहा है, 10-10 तज़ज़िये हैं, 10-10 तबसरे हैं। अब नतीजतन जवान जब देखता है तो उसके पास उसूल तो है नहीं। उसूल जब आपके पास, देखिए मालूमात को मालूमात के ज़रिए से नहीं परखा जाता,
अगर आप मुझसे कहेंगे कि अभी दिन हो रहा है तो मैं आपको ऐसा बंदा भी ला दूंगा जो कहेगा अभी रात हो रही है, तो मालूम से मालूम टकरा गया। अब आप परखें कैसे कि कौन सी सही मालूमात है कौन सी गलत मालूमात। तो मालूमात को परखने के लिए इंसान के पास कुछ उसूल होने चाहिए। उन उसूल के जरिए से इंसान सदाकत को झूठ से अलग कर देता है। भाई सोनार क्या करता है, सोनार के पास जाते हैं, आपने अपना सोना दिया, कहा कि मुझे ये सोना अपना किसी मजबूरी की वजह से मुझे फरोख्त करना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो फौरन आपकी कीमत सोने की कीमत लगा के आपको पैसे दे देगा? नहीं, पहले कहेगा एक दिन बाद आना, इस सोने को पहले जाकर परखूंगा। कहेगा नहीं कहेगा, इस सोने को जाकर परखो। भाई क्यों परख रहे हो, ये तुम्हारे सोना भी तुम्हारा गोल्डन है, ये भी गोल्डन है, तुम्हारा सोना भी धात का बना हुआ है, ये भी धात है, तुम्हारे पास जो सोना है उसके अंदर चमक है, इस सोने में जो चांदी चेन लाया हूँ, जो लॉकेट लाया हूँ, जो चूड़ियां लाया हूँ, इसमें भी चमक है। तो वो कहेगा कि कितना सही बात है कि ये धात जरूर है, इसमें चमक जरूर है, इसमें सुनहरीपन जरूर है, लेकिन ये मालूम करने के लिए कि ये सही सुनहरीपन है या जाली है, इसके लिए मेरे पास एक क्राइटेरिया है, इसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक पर आपकी चेन को तोलूंगा ताकि मालूम हो जाए कि कितनी खालिस है कितनी ना खालिस है। तो किस तरीके से मालूमात को परखा जाता है, कुछ उसूलों के जरिए से। अब जब आपके पास उसूल नहीं होंगे तो आज मैं आपको कहूं दिन हो रहा है तो आप कहेंगे सही कह रहे हैं, कल कोई और आकर कहेगा रात हो रही है आप कहेंगे सही कह रहे हैं, तीसरा बंदा आके यहाँ पर कहेगा कि ये जो है अभी शाम हो रही है तो आप कहेंगे सही है, फिर कोई और बंदा आके कहेगा नहीं ये शाम भी नहीं है, ये दिन भी नहीं है, ये रात भी नहीं है, बल्कि ये सुबह सवेरे का वक्त हो रहा है, तो आप कहेंगे सही है, क्योंकि उसूल पास नहीं होंगे। तो उसूल इंसान के पास होने चाहिए। मालूमात की कसरत से इंसान गूगल बन जाता है। मालूमात की जिसके पास बहुत कसरत होती है उसका नाम रख दीजिए आयतुल्लाह गूगल। वो क्या है, आयतुल्लाह गूगल है, वो गूगल की तरह उसको सब मालूम है, लेकिन क्या उसे कोई इंसान कहा जा सकता है, क्या उसे कोई आलिम कहा जा सकता है, क्या उसे कोई दानिश्वर या कोई मुफक्किर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि मालूमात का खजाना है इसके पास। इसे खुद भी नहीं मालूम कि जो मैं बता रहा हूं इसमें से क्या सच्चा है और क्या झूठा है। तो आज के पहले के जमाने के लोग फिकदान मालूमात की वजह से हलाक होते थे, लेकिन आज के लोग कसरत मालूमात की वजह से हलाक हो रहे हैं। इतनी आरा है, इतनी अंजार है कि नतीजतन माशरे के इल्म मालूमात के बावजूद माशरे का कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इस्तेराब में और कंफ्यूजन में और शक और तर्दीद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि मालूमात की बेतहाशा कसरत इंसान के पास, इंसान के मोबाइल में, इंसान के हाथ में एक दस्तगाह और एक मशीन की सूरत में फराहम हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि हमारे गुज़श्ता उलमा की एक रविश जो थी, जिसकी वजह से वो उस हदफ की जानिब मुतवज्जे रहते थे जो परवरदिगार आलम ने उनके लिए मुकर्रर किया है, और इस पैगाम को मैं अमली दर्स के तौर पर देना चाहता हूँ अपने नौजवान दोस्तों को। वो क्या है भाई, आज फारिग तरीन इंसान, अपना जाती तजुर्बा बता रहा हूँ, जाती तजुर्बा जिसके बारे में मुझे पता है कि ये फारिग तरीन इंसान है, इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना शादीशुदा है, ना औलाद है, ना कोई वालदैन की तरफ से जिम्मेदारी है, उसे ज़रा कहिए कि मेरा ये काम है कर दोगे, तो वो क्या कहेगा, नहीं बहुत मसरूफ हूँ। फारिग तरीन इंसान जिसके पास ना आयली जिम्मेदारियाँ हैं, ना इज्दवाजी जिम्मेदारियाँ हैं, ना औलाद है, ना कोई माशी जिम्मेदारियाँ हैं, ना वालदेन की जानिब से कोई, जैसे कहिए कि कोई माशी बटन डाला गया हो, उससे कहा जाए कि भाई वो काम कर दोगे कि नहीं, किबला बहुत मसरूफ हूँ। भाई तू क्यों मसरूफ है? कोई इज्दवाजी इंसान, कोई शोहर मसरूफ हो तो ये बात समझ आती है, कोई स्टूडेंट इम्तिहान के दिनों में मसरूफ हो तो ये बात समझ आती है, कोई बैंक में काम करने वाला नौकरी पेशा इंसान, मजदूर इंसान मसरूफ हो तो समझ आती है। भाई तू क्यों मसरूफ है, तेरी तो छुट्टियां चल रही है। कहा नहीं बहुत मसरूफ हूँ। क्या मसरूफ है भाई? इतनी उसकी फरागत को मसनूई मसरूफियात ने ऐसा भर दिया है कि उस फारिग तरीन इंसान के पास एक लहजा भी फरागत के लिए बाकी नहीं रहता है, या नहीं है ये? अब गुज़श्ता उलमा की जाकर आप रविश, गुज़श्ता उलमा और उनसे पहले गुज़श्ता अंबिया की जाकर रविश जाकर देखिए, तो आपको ये बात नज़र आएगी कि वो दिन का एक मुख्तसर वक्त जो है वो सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस कर देते थे और उसमें कोई जिम्मेदारी कोई मसरूफियत नहीं रखते थे, और उस फरागत में सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि परवरदिगार आलम ने जो मकसद हमारे लिए मुहैया किया है हम उसे हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूं भाई, आप ماہ مبارک رمضان کی اور بقیہ ذاتی طور پر ایک بڑی عبادت جس کا بہت اجر بیان کیا گیا ہے وہ ہے پروردگار عالم کے گھر میں اعتکاف کرنا. ہے اعتکاف یا نہیں ہے؟ خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ بھی سال میں کوئی سے بھی 3 دن اعتکاف ماہ مبارک رمضان سے مخصوص نہیں ہے. سال کے کسی بھی 3 دن، ایسے 3 دن جس میں آپ کے لیے روزہ رکھنا جائز ہو، ان میں آپ مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں. اب نتیجتاً اگر کوئی 8 ذی الحجہ کو اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 8 ذی الحجہ روزہ رکھنا جائز، 9 ذی الحجہ روزہ رکھنا جائز، 10 ذی الحجہ کو چونکہ عید قربان ہے اور سال کے 2 دن ہیں کہ جن دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید قربان کا دن، تو چونکہ 3rd دن عید قربان کا دن بن رہا ہے تو لہٰذا اس ڈیوریشن میں اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. لیکن بقیہ سال کے کوئی سے بھی 3 دن، خواہ 13, 14, 15 کا مہینہ ہو، خواہ 1st, 2nd, 3rd ہو، خواہ 27, 28, 29 ہو، کوئی سی بھی تاریخ میں، کوئی سے بھی مہینے میں انسان اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن افضلیت اور زیادہ ثواب اور زیادہ اجر ماہ مبارک رمضان میں. حد تو یہ ہے کہ ہمارے رسول احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ماہ مبارک رمضان کے جو آخری 10 دن ہوا کرتے تھے، یعنی 21 سے لے کر آخر رمضان تک، اس میں اپنا بستر جو ہے وہ سمیٹ لیا کرتے تھے اور 10 دن کا سرکار جو ہے وہ اعتکاف کرتے تھے. ایک سال جب ایک غزوے اور جنگ کی وجہ سے اللہ کے رسول اس ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے تو اللہ کے رسول نے اگلے سال اس سال کی قضا بھی کی اور نئے آنے والے سال کا بھی اعتکاف کیا. یعنی 20 دن پروردگار عالم کے گھر میں قیام کیا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اب یہ اعتکاف کی فضیلت سمجھ آ گئی نا. اب میں ذرا آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ایک حدیث دکھا دیجئے کہ جس میں اعتکاف میں کوئی خصوصی عمل بیان کیا گیا. توجہ ہے، جب آپ جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو حج کی اپنے خصوصی اعمال ہیں یا نہیں ہیں؟ عرفات جانا ہے، مشعر جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، رمی جمرات کرنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، اپنے مخصوص اعمال ہیں. جب آپ سید الشہداء کی زیارت کربلا معلیٰ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے مخصوص اعمال ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، آپ نے زیارت اربعین پڑھنی ہے، آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، یہ زیارت کرنی ہے. لیکن اعتکاف کے لیے کوئی خصوصی عمل بیان ہوا ہے؟ کوئی خصوصی عمل اعتکاف کے لیے؟ اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ وہی کام، وہی نمازیں، وہی عبادتیں جو عام انسان عام طور پر پڑھتا ہے، عام حالت میں پڑھتا ہے، اعتکاف میں بھی وہی پڑھو. بھائی کوئی خصوصی دعا ہے؟ نہیں. کوئی خصوصی نماز ہے اعتکاف کی؟ نہیں. کوئی خصوصی عبادت ہے روزے کے علاوہ؟ نہیں. بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو پروردگار عالم سے اتنی بات سمجھ آ سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے در حقیقت اعتکاف کو رکھا اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی ظاہری دنیا سے 3 دن کے لیے منقطع ہو جائے، تاکہ پروردگار عالم کی خلقت اور اس کی مشیت میں تدبر اور تفکر کر سکے. کیوں رکھا ہے اعتکاف کو؟ گزشتہ زمانے کے انبیاء اپنے سال کا ایک خصوصاً ختمی مرتبت، اپنے مہینے کا، اپنے سال کا ایک دورانیہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. بھائی پروردگار عالم کی عبادت تو دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، پروردگار عالم کی عبادت تو مسجد الحرام میں بھی ہو سکتی ہے. کیوں جا رہے ہیں غار حرا؟ تاکہ کچھ دورانے کے لیے ظاہری جھمیلوں سے اور مصروفیات اور مشغولیات سے مکمل طور پر خود کو منقطع کر دیں، تاکہ منقطع کرنے کے بعد پروردگار عالم کے ان مقصد اور اس ہدف پر صحیح معنی میں غور ہو سکے. اب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سب بھی جو ہے وہ کٹی پہاڑی چلے جائیے، وہاں پر کوئی غار ڈھونڈ کر آپ بھی جو ہے وہ وہاں پر موتقب ہو جائیے، یہ نہیں کہہ رہا. لیکن بس اتنا تھا سو ہم کر سکتے ہیں نا، رسول کی امت کے ماننے، رسول کی امتی ہے، رسول کے پیروکار ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دن کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں کہتا، صرف 10 منٹ موبائل بند کریں، موبائل کو سائلنٹ کر دیں، وائبریشن پہ بھی نہیں رکھیے گا، کیونکہ وائبریشن ہوگی تو بار بار تجسس ہوگا کہ بھائی دیکھیں کہ کون سا اہم میسج آ رہا ہے، کون کوئی بڑی نوکری لگ گئی، کوئی بانڈ کھل گیا، کوئی لاٹری کھل گئی، تو وائبریشن بھی بند کیجیے، سائلنٹ کر دیجیے. اب 10 منٹ صرف بیٹھ کے سوچیے، صرف یہ سوچیے کہ پروردگار، 3 سوال پہ سوچیے، 3 سوال پہ یہ سوچیے کہ پروردگار نے مجھے کہاں سے بھیجا ہے، پروردگار نے مجھے کہاں بھیجا ہے اور پروردگار مجھے کہاں بھیج رہا ہے. صرف 3 سوالات، زیادہ نہیں. کوئی میتھس کا معادلہ، کوئی میتھس کا سولوشن حل کرنے کا نہیں کہہ رہا، میتھس کا ریاضی کا پرابلم حل کرنے کا نہیں کہہ رہا. بھائی اب یہ سنیے گا، بھائی وہ نیوٹن نے کتنا بڑا قانون بنا لیا سیب کے گرنے سے. اگر نیوٹن اس زمانے میں کوئی کام کر رہے ہوتے تو سیب کے گرنے پر ان کی توجہ پہنچتی ہے؟ पहुंचती। अगर कोई और काम कर रहे होते नहीं पहुंचती। वो फारिग बैठकर गौर कर रहे थे, तदब्बुर कर रहे थे, तफक्कुर कर रहे थे। उस गौर की वजह से जब सेब गिरा तो इस मामूली तरीन काम जो कि हजारहा सैकड़ों मरतबा उनकी नजरों के सामने अंजाम पाया होगा, लेकिन उस सेब के गिरने से उन्होंने इतनी बड़ी साइंसी तरक्की और कानून ईजाद कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने आप अपने जहन को फारिग रखा सारी मुख्तसर वक्त के लिए, ज्यादा वक्त के लिए नहीं कह रहा। ये नहीं कह रहा कि आप जो है आपका बॉस आपको बुला रहा है, आपने कहा भाई मौलाना ने कहा था गौर और फिक्र करो, मैं जो है वो काम के औकात में मस्जिद में बैठकर गौर और फिक्र कर रहा हूँ। नहीं, ये वाला गौर और फिक्र नहीं कर रहा। जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ वक्त पर गुजारे, जो माशी तौर पर पाबंद है वो माशी पाबंदियों को और जिम्मेदारियों को पूरा करे, जिस पर आयली जिम्मेदारियां हैं वो आयली जिम्मेदारियों को पूरा। इन सबके बाद दिन के 10 मिनट तो हर बंदा निकाल सकता है ना भाई। जब 10 मिनट व्हाट्सएप के लिए निकल जाते हैं तो 10 मिनट खुदा के लिए कैसे नहीं निकल सकते? जब 10 मिनट व्हाट्सएप के लिए निकल जाते हैं, जब 10 मिनट जो है वो उलमा की तकारीर सुनने के लिए निकल जाते हैं, जब 10 मिनट मुख्तलिफ इबादात मुख्तलिफ मसरूफियात मुख्तलिफ मशगूलियात के लिए निकल जाते हैं भाई, 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चों को कहते हैं कि अभी बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी जौजा को कहते हैं कि अभी मैं काम कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब ना करना, 10 मिनट क्या करें? 3 सवाल पर गौर करें, कहाँ से आया हूँ, कहाँ भेजा गया हूँ और कहाँ भेजा जा रहा हूँ। ये 3 सवाल अगर आपने गौर कर लिए तो यकीन जानिए कि बड़े बड़े दानिश्वर बड़े बड़े मुफक्किरों की जो कुतियाँ हैं आप इन 3 सवालों के जवाब के जरिए से उन्हें हल कर लेंगे। क्या करें? कुछ फरागत इंसान अपनी ज़ात के लिए निकालें, क्योंकि असल बात यह है कि जिस तरीके से आपने अब ये मिसाल इतनी जिसे कहिए कि महज़ब मिसाल नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से आपने एक मंशियात इस्तेमाल करने वाले को देखा है ना, एक नशेई को देखा है। नशेई जब नशा करता है तो अपने नशे में बिल्कुल धुत होता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि वो कहाँ पर है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम होता कि उसकी क्या कैफियत होती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी मादी ज़िंदगी जिससे हम गुजर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक नशे के तौर पर बन गई है। उसने हमें नशे के तौर पर इतना धुत कर दिया है, इतना मस्त कर दिया है, इतना मखमूर कर दिया है, इतना खुद के अंदर उलझा दिया है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम कि हमारा एक खुदा है और हमें उस खुदा से जाकर मिलना है। क्यों? क्योंकि इस मादी दुनिया में इतना भागे जा रहे हैं ये बिल्कुल नशे ही की तरह से, जिस तरह से वो नशे में धुत होता है हम जो है वो ज़ाहिरी दुनिया की मशगूलियात में धुत और मसरूफ हो चुके हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आज जिस मौजू को मैं उस ख़ानदानी अहाते में जो अखलाकी कदर है और परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल करने का सबब है जिसे मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, वो यह है कि परवरदिगार आलम की मशीयत पर राज़ी रहना सीखिए। परवरदिगार आलम की मशीयत पर जो है वो राज़ी रहना सीखिए। एक मरतबा 5वां इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, के सामने जाबिर आए। कौन है जाबिर? जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। हदीस किस्सा की रिवायत किसने की है? जाबिर ने। अन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी जाबिर की खसूसियत क्या है? करबलाए मोहल्ला के पहले मुजाबिर कौन है? जाबिर। पहली ज्यारत जो करबलाए मोहल्ला की है वो जनाबे जाबिर ने की है। तीसरी खसूसियत जाबिर की यह है कि जाबिर ने 5 इमामों की ज्यारतें की हैं। जाबिर ने मौलाए मुत्तकियान के ज़माने को भी देखा, सैयदुश्शोहदा इमाम मुज्तबा के ज़माने को भी देखा, सैयदुश्शोहदा के ज़माने को भी देखा, सैयद साजिदीन के ज़माने को भी देखा और 5वें इमाम की भी ज्यारत की है। इसी वजह से जब रसूल जानते थे अपने इल्म की बुनियाद पे कि जाबिर तुम्हें परवरदिगार आलम बड़ी उम्र अता करेगा और तुम मेरे हम नाम फर्जंद से जब मुलाकात करना तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना। 5वें इमाम का नाम क्या था? मोहम्मद। लकब क्या था? बाकर। तो 5वें इमाम से जब उनकी मुलाकात हुई है ना, 5वें इमाम की मैं क्या बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातों में जो घरेलू मुश्किलात होती है ना, इसमें परवरदिगार की मशीयत पर राज़ी रहना सीखिए। राज़ी रहना सीखिए, मजबूरी की रजा नहीं। एक होता है मजबूरी में भाई कुछ नहीं कर रहे तो अब राज़ी रहना पड़ेगा, कुछ और तो ऑप्शन है नहीं, वो वाली रजा नहीं, बल्कि दिल से अपने दिल को कहने कीजिए कि जिस तरीके से मैं अपने बच्चे की बेहतरी जानता हूँ मेरा बच्चा नहीं जानता, इसी तरीके से मेरा परवरदिगार भी मेरी बेहतरी जानता है, मैं खुद अपनी बेहतरी नहीं जानता। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और दिल से परवरदिगार आलम के लिए राजी हुई। जाबिर आए पांचवें इमाम के पास, पांचवें इमाम ने जाबिर से कहा, जाबिर हमें ये बताओ कि तुमने जिंदगी को कैसा पाया। क्या सवाल किया? तुमने जिंदगी को कैसा पाया। अब जाबिर का जवाब सुनिएगा। जाबिर ने कहा, फरजंद रसूल, मैंने जिंदगी को ऐसा पाया कि मैं मौत को हयात पर तरजीह देता हूँ। हयात को नहीं भाई, दुआ, कोई मौलवी दुआ मांगता है तो दूसरों की जिंदगी की दुआ मांगता है ना। जाबिर क्या कह रहे हैं कि मैं मौत को जिंदगी पर पसंद करता हूँ, मैं बीमारी को शिफायाबी सेहतमंदी पर पसंद करता हूँ, मैं तंगदस्ती को सर्वतमंद होने पर पसंद करता हूँ। कितना अजीब अजीब और गरीब जवाब जाबिर दे रहे हैं। किसे भाई? हर इंसान को दौलतमंद होना पसंद होता है। जाबिर क्या कह रहे हैं? ए फरजंद रसूल, मुझे तंगदस्त होना पसंद है, सर्वतमंद होने से ज़्यादा तंगदस्त होना पसंद है। ए फरजंद रसूल, मुझे बीमार होना पसंद है सेहतयाब होने से, मुझे मौत पसंद है जब मरने से, और मुझे बुढ़ापा पसंद है जवानी से। कितना कितना आरिफाना और कितना जाहिदाना जवाब दिया है ना जाबिर ने। अब जानते हो, तुम्हारा इमाम जो कि उस्ताद उरफा है, तुम्हारा इमाम जो कि उस्ताद इरफान है, तुम्हारा इमाम जो कि उस्ताद सैर सलूक है, तुम्हारा इमाम जो कि पेशवाए मानवियत है, उसने कहा, जाबिर तुम इतने इमामों के पास रहे लेकिन आज तक परवरदिगार की रिजायत समझ नहीं सके। अरे हम आले मोहम्मद का तो तरीका कार यह है कि अगर परवरदिगार आलम हमें जवानी दे दे तो हमें जवानी पसंद है, अगर बुढ़ापा दे दे तो बुढ़ापा पसंद है, अगर जिंदगी दे दे तो जिंदगी पसंद है, अगर मौत दे दे तो मौत पसंद है, अगर फकर दे दे तो फकर पसंद है, अगर दौलत दे दे तो दौलत पसंद है, अगर मरीजी दे दे तो मरीजी पसंद है, अगर सेहतयाबी दे दे तो सेहतयाबी पसंद है। ऐ जाबिर, हमारी पसंद कुछ नहीं रही, जो हमारे रब की पसंद होती है वही हम बंदों की पसंद बन जाती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद पाल मोहम्मद पर। जाबिर, जो परवरदिगार की पसंद होती है वही हमारी रजा बन जाती है, जो उसकी मशीयत होती है वही हमारी ख्वाहिश बन जाती है। तो आज कितने हम मुस्तरिब नजर आते हैं। आज अफसोस के साथ है कि अगर शौहर घर का जो सरपरस्त है वो ज्यादा माल की तमा ना भी करे तो उसे उसके भाई उसकी बहन जो है वो इतना दबाव में लेते हैं, इतना प्रेशर में लेते हैं कि भाई वो देखो पड़ोसी के पास तो नई गाड़ी आ गई, तुम अभी तक पुरानी 70 चला रहे हो, वो देखो उसके बच्चे तो फलां स्कूल में जा रहे हैं, तुम जो है वो तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वो देखो उसकी बेगम ने कितने महंगे जोड़े लिए हैं, तुम देखो कितनी गुर्बत में रह रहे हो। तो नतीजा क्या होता है? जब ये दबाव, जब मर्द पर ये दबाव ईजाद होता है तो यहीं पर जब खानदान राजी नहीं रहता, दबाव ईजाद करता है, दबाव की वजह से मर्द मजबूर होता है कि हलाल को छोड़कर हराम के रास्ते पर चलना शुरू करे। क्यों है? लुकमा हराम खाने की आदत बाज़ लोगों की, आपकी बात नहीं कर रहा, बाज़ लोगों की क्यों बन जाती है? क्या वजह है कि लुकमा हराम खा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि कम पर काने नज़र नहीं आते, कम पर, कम माल पर इंसान जो है वो परवरदिगार की रजा पर राजी होता हुआ नज़र नहीं आता। जानते हो रजा किसे कहते हैं? एक मतबर रसूल गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल ने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल हमें ये बताओ कि मा तफसीरुर रिजा, के परवरदिगार आलम की मशीयत में राजी होने की डेफिनेशन क्या है? परवरदिगार आलम की रिजा में, उसकी मशीयत में रिजायत की डेफिनेशन क्या है? क्या राजी होना किसे कहते हैं? तो जिब्राइल ने कहा कि है रसूल गिरामी, रिजायत इसे कहते हैं कि इंसान ला यस्खतु अला सय्यदिही असाबा मिन अद-दुनिया अम लम युसिब, कि इंसान अपने परवरदिगार आलम पर गजबनाक ना हो, उससे शिकवा शिकायत ना करे, खा उसे दुनिया मिले खा उसे दुनिया ना मिले। दुनिया मिले तो भी गजबनाक ना हो कि मुझे कम क्यों मिली उसे ज्यादा क्यों मिली, और अगर दुनिया ना मिले तो भी गजबनाक ना हो कि परवरदिगार हम तो तेरी इतनी इबादतें अंजाम लाते थे, उन इबादतों के नतीजे में परवरदिगार तूने हमें कुछ नहीं दिया, वो तो कितने गुनाहगार हैं उन्हें सब कुछ दे रहा है या नहीं है? वही परवरदिगार आलम की रजा पर राजी रहने की कोशिश करो। जितना माल परवरदिगार आलम ने दिया है, अच्छा अब ये बात ब्रैकेट में कहते चला जाऊं भाई, ये जितनी भी अखलाकी कदरें हैं ना, अखलाकी कदरें, क्या तवक्कुल, क्या कनाअत, क्या रिजा, क्या सब्र, क्या सदाकत, ये सारी अखलाकी कदरें, तवज्जो से सुना मेरे सुनते को, ये सारी अखलाकी कदरें इंसान की जिद्दोजहद के साथ मुनाफात नहीं रखती हैं। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करो घर में बैठ के कहो परवरदिगार आलम पे तवक्कुल कर रहा हूं छत फटेगी और मेरे लिए रिस्क और मनोसलवा नाजिल हो जाएगा, नहीं। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है, राजी होने का परवरदिगार की तकसीम और तकदीर पे ये मतलब नहीं है कि तुम कोशिश ही नहीं करो, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे पहला कायदा जो कुरान मजीद ने फार्मूले के तौर पर और इंसान के नस्बुल ऐन के तौर पर बयान किया है, और वो कायदा याद करके और हदीये के तौर पर ले जाओ, वो कायदा ये है कि लैस लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए कुछ भी नहीं है मगर वही है जिसकी वो कोशिश करता है। कायदा क्या है? लैस लिल इंसान इल्ला मसा, इंसान के लिए वही है जिसकी वो सही करता है, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो जिद्दोजहद करता है, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो तलाश और कोशिश करता है, इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो मेहनत करता है। लेकिन अगर मेहनत करने के बावजूद किसी जाहिरी असबाब की वजह से तुम्हें मुतवक्का रिजल्ट ना मिले, तो अब परवरदिगार की मशीयत पर बेताबी ना करो बल्कि उसकी मशीयत पर राजी होकर दिखाओ। पहले क्या करो, पहले मरहले में कोशिश करो। बाज लोग अखलाकी कदरों का क्या गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत तफसीर करते हैं, कहते हैं कि भाई मौलाना ने कहा था तवक्कुल करो, इसका मतलब है काम करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना ने कहा था परवरदिगार की तकसीम पर राजी रहो, तो तकसीम का मतलब, तकसीम पर राजी होने का मतलब यह है कि हाथ पैर ना चलाओ, नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर ऐसा होता तो हमें आइम्मा मासूमीन माश के लिए कोशिश करते हुए नजर ना आते। खुद तुम्हारा मौला अमीरुल मोमिनीन दिन भर जो है या नखलिस्तान में दरख्त सेंचा करता था या जो है वो कुओं की खुदाई किया करता था। अगर काम ना करने पर अगर ऐसे ही रोटी की आ जाए, अगर ऐसे ही किसी के तरीके से किसी की रिस्क तामीन हो जाए, जरूरत पूरी हो जाए, तो सबसे पहले खुद मौलाए मुत्तकियान इस बात के सजावार थे कि बगैर मेहनत किए जो है वो इनकी माशी जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन तुम्हारा मौला माशी तौर पर तगोदो करता हुआ नजर आता है, तुम्हारा मौला माशी तौर पर मेहनत करता हुआ नजर आता है, तुम्हारा मौला रिस्क हलाल कमाता हुआ नजर आता है, तुम्हारे आइमा मेरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा, उसे खुलासा बता रहा हूं, तुम्हारे आइमा खेत में पसीना बहाते हुए नजर आते हैं। अगर मतलब अखलाक, अगर राजी होने का मतलब ये होता कि कोशिश नहीं करनी, तो तुम्हारे आइमा को कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरे एक ठोकर में परवरदिगार ने पूरी कायनात उनके लिए रख दी थी। तो अब अगर उसके बावजूद सारी कायनात की चाबियां उनके हाथ में हैं और उसके बावजूद अगर वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मानने वाला, उनका मानने वाला कैसे मुमकिन है ये कहकर कोशिश ना करें कि परवरदिगार ने जितना देना होगा दे देगा। नहीं, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, तलाश करनी है, जिद्दोजहद करनी है, लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ करना है, उसके बाद जितना परवरदिगार दे दे अब तुम्हें उस पर राजी रहना है। अब इमाम से मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जब ये पूछा गया क्या इमाम ने कितने तीन अमली नमूने बताए हैं, अमली नमूने, कहा, पूछा गया फर्ज के या अमीर अल मोमिनीन आप हमें ये बताइए कि हम परवरदिगार की रजा को कैसे हासिल करें। कौन है अली? वही अली जिसने बिस्तरे रसूल पर सोकर परवरदिगार की रजायत को खरीद लिया था, वही अली आज बता रहा है अपने चाहने वालों के लिए कि तुम किस तरीके से रिजाए खुदा को खरीदो। तो मेरे मौला ने बताया कि रिजाए खुदा खरीदने की तीन तरीके हैं, तीन काम करो ताकि तुम परवरदिगार की रिजायत को हासिल कर लो। पहला काम खब्जुल जानिब, यानी तुम्हारे अंदर इनकिसारी और फुरूतनी नजर आनी चाहिए। जरा सा दो किताबें पढ़ ली, दो मिंबर के सीने पर बुलंद हो गए, दो गाड़ियां साथ चलने लगी, दो सिक्योरिटी के गार्ड में इजाफा हो गया, दो कोठी ज्यादा हो गई, दो बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया, तो अपने आप को कुछ बड़ा समझना ना शुरू कर दो, इसलिए क्योंकि परवरदिगार ने कारून को तुमसे ज्यादा खजाना अता किया था। परवरदिगार ने कारून को तुमसे ज्यादा खजाना अता किया था, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा जिसने कारून को खजाना दिया था وہی خزانہ قارون کے لیے باعث عذاب بن گیا. دعا کرو کہ پروردگار نے جو عزت تمہیں دی ہے, جو علم تمہیں دیا ہے, جو بینک بیلنس تمہیں دیا ہے, جو تعلقات تمہیں دیے ہیں, جو کوٹھی تمہیں دی ہے, جو فلیٹ تمہیں دیا ہے, دعا کرو کہ یہ رحمت کی وجہ سے دیا ہو, عذاب کی وجہ سے نہ دیا ہو. دعا کرو کہ یہ جو نعمتیں پروردگار نے دی ہے, یہ نعمت کے عنوان سے دیا ہو, زحمت کے عنوان سے نہ دیا ہو. تو انسان کے اندر عاجزی نظر آنی چاہیے. اب ذرا دیکھو عاجزی میں تمہیں آل محمد کتنا بلند نظر آئیں گے. بھائی آل محمد وہ ہے نا جو ہر اخلاقی قدر میں, اخلاقی ویلیو میں تمہیں سر بلند نظر آتے ہیں. ذرا عاجزی تو دیکھو. پرانے زمانے میں یہ آج جس طریقے سے جو آپ کہیے کہ گھر کی جو تعمیرات ہے, گھر کی تعمیرات میں آج جو ہے وہ بیت الخلاء اور غسل خانہ گھر کے اندر بنتا ہے. پرانے زمانے میں ذرا آج سے 50-60 سال پہلے چلے, زیادہ پہلے جانے کی ضرورت نہیں ہے, 50-60 سال پہلے چلے جائیے تو گھروں کے اندر غسل خانہ بنانا اور بیت الخلاء بنانا جو ہے وہ کبھی امر شمار کیا جاتا تھا. آج بھی آپ جائیے, آپ ذرا یورپ جا کر دیکھیے, آپ ذرا ایران جا کر دیکھیے تو ان کی تعمیرات میں آپ کو بیت الخلاء جو ہے وہ گھر کے اندر نظر نہیں آئے گا. کیونکہ اطباء یہ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء جو آپ گھر میں بناتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو عفونت اور جو تعفن اٹھتا ہے وہ تعفن انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہم نے مکمل طور پر مغربی کلچر کو اپنا لیا ہے. اب مغرب نے ہمیں پتلون پہنائی, ہم نے پتلون پہن لی. مغرب نے ہمیں جو ہے وہ کہا کہ بیت الخلاء کمرے کے اندر ہونا چاہیے تو ہم نے بیت الخلاء کمرے کے اندر بنا دیا. مغرب نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ ورزش نہیں کرنی, صرف گاڑی میں بیٹھو, گاڑی سے موٹر سائیکل میں بیٹھو, موٹر سائیکل سے گھر چلے جاؤ, گھر سے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. نتیجتاً ہم نے ورزش کرنا چھوڑ دی. مغرب نے ہمیں کہا کہ تم ایسے ایسے فاسٹ فوڈ کھاؤ, ہم نے فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیے. تو ہم مکمل طور پر مغرب کے حقیقی معنی میں مقلد بن چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, اس گزشتہ زمانے میں غسل خانہ جو ہے وہ گھروں میں نہیں بنایا جاتا تھا. کیا ہوتا تھا, غسل خانہ ایک شہر کا یا ایک علاقے کا عمومی غسل خانہ ہوتا تھا. جس بھی انسان کو نظافت کے لیے نہانا ہوتا وہ وہاں پر آتا, حمام میں آ کر غسل کیا کرتا تھا. یہ پرانے زمانے کا عمومی طریقہ کار, ہر شہر, ہر ملک کا, ہر دیہات کا یہی طریقہ کار تھا. تو آٹھویں امام, امام علی ابن موسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام, کا زمانہ ہے. آٹھویں امام حمام گئے. حمام جانے کے بعد, حمام سننا اس روایت کو, سننا, حمام جانے کے, جو بہت بڑے بڑے افراد نظر آتے ہیں نا, بہت بڑے بڑے لوگ جن کے ذرا کالر بالکل نیچے نہیں ہوتے, ذرا جن کی نظریں نیچے نہیں جھکتی, انہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے امام نے کس طریقے سے توازوں کی مثال قائم کی ہے. آٹھویں امام حمام گئے. حمام جانے کے بعد ایک شخص نے امام کو پہچانا نہیں اور امام سے کہا کہ آپ اس کو, اس نے امام کو حمام والا سمجھا کہ حمام کا جو منتظم ہوتا ہے, اور امام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ میری پشت پر کیسا مل دیجئے. کیا کہہ رہا ہے امام سے, میری پشت پر کپڑا مار دیجئے تاکہ پشت پر سے جو میل کچیل ہے وہ اتر جائے. یقین جانو تمہارے امام نے یہ نہیں کہا, میں مجھے کہہ رہے ہو, میں تو امام وقت ہوں, میں تو فرزند رسول ہوں, یہ میرے پروٹوکولز کے خلاف ہے کہ میں یہ کام کروں. یقین کرو امام نے کیسا اٹھایا اور اس شخص کی پشت پر کیسا ملنا شروع کر دیا. جب ایک شخص آیا, ایک شخص باہر سے آیا حمام میں, اس نے دیکھا کہ فرزند رسول جو ہے وہ اس طریقے سے کیسا مل رہے ہیں ایک عام انسان کی, ایک ناشناس انسان کی پشت پر. تو اس نے اس ناشناس انسان سے پوچھا, کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا, نہیں میں نہیں جانتا, یہ تو بھائی حمام والا معمولی انسان ہوگا جو یہاں کا منتظم ہوگا, حمام چلاتا ہوگا. تو جانتا نہیں ہے تبھی تو نے یہ جسارت کی ہے. یہ آٹھواں امام امام علی ابن موسر رضا ہے. جب اس نے جیسے ہی یہ سنا, امام کے پیر پہ پڑ گیا کہ فرزند رسول معاف کیجئے گا, یہ جسارت ہو گئی, یہ گستاخی ہو گئی. امام نے اسے واپس اس کے مقام پر بٹھایا اور کہا کہ ہمیں چھوٹے کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے, ہمیں اس طرح کے کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے. آج ذرا کہہ دیجئے کسی سے, بھائی مسجد میں جھاڑو لگانی ہے, میں جھاڑو لگاؤں گا, اس کے لیے آپ ایک 500 روپے لو, اس خادم کو, نوکر کو کہو خود ہی جھاڑو لگا. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹے کام بڑے کام ہو گئے ہیں. امام نے کیا درس دیا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے. امام ہے, وقت کا امام ہے, کائنات کا مالک ہے, اور کتنا, جسے عام زبان میں ہم کہہ رہے ہیں, کتنا معمولی کام انجام دے رہے ہیں. جب سامنے والے چاہنے والے نے آگے روکا, اس کے باوجود امام رکے نہیں بلکہ اسے مکمل طور پر آخر تک کیسا مل دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ امیر المومنین کہ پروردگار کی رضا حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہ تم متواضع رہو، تمہارے اندر انکساری نظر آنی چاہیے. اب انکساری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دے. اب عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب سے بچاتا ہے خطیب تو انسان جو ہے وہ دوسری جانب گر جاتا ہے. توازو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیں، آپ کے کندھے جو ہے وہ بالکل ڈھلک جائیں، بالکل جھک جائیں، آپ جو ہے وہ سامنے والے کی جتنی گالیاں ہیں، جتنے طنز ہیں، مکمل طور پر ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں، توازو کا مطلب یہ نہیں ہے. توازو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی کام ملا ہے تو انسان اسے اپنے اسٹیٹس کے مخالف نہ سمجھے، اس کام کو احسن وجہ کے ساتھ انجام دے. اچھا فرزند، یا علی دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جس سے پروردگار کی رضایت حاصل ہو سکتی ہے؟ کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، استغفار کثرت سے کیا کرو. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ استغفار کا درس جو ہے ائمہ معصومین نے صرف آپ کو دیا ہے. آپ جا کے مولا امام سجاد کی مناجات خمسہ عشر جا کر دیکھیے، اس میں تائبین کی مناجات ملے گی جس میں امام توبہ گزار کی حیثیت سے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں. اس میں آپ کو خاشعین کی مناجات ملے گی کہ خاشعین کی حیثیت سے پروردگار کی دعا کر رہے ہیں. اس میں آپ کو مغفرت مانگنے والوں کی طرف سے حیثیت سے دعا مانگ ملے گی کہ جس کے عنوان سے امام مستغفر کی حیثیت سے مغفرت چاہنے والے کی حیثیت سے پروردگار سے مناجات کر رہے ہیں. تو خود آئمہ نے کہا ہے کہ انسانوں، ہم نے بھی تم پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیا ہے اور تم بھی کثرت سے استغفار کیا کرو. بس دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ کیا ہے جو امیر المومنین بتا رہے ہیں پروردگار کی رضایت حاصل کرنے کا؟ کہ انسان توازو اور انکساری ایجاد کرے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار اور پروردگار کی مغفرت طلب کرے. اور تیسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار کی رضایت کو حاصل کرے، وہ ہے کثرت سے صدقہ ادا کرنا. کثرت سے صدقہ عطا کرنا، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بین الطلوعین یعنی فجر کی اذان کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، فجر کی اذان کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اگر اس گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر پروردگار عالم کی رضایت کے لیے صدقہ نکال لے، تو اس نے پورے دن شیطان کو اپنے سے نا امید بنا دیا ہے. اگر کوئی اس دورانیے میں صدقہ نکال لے تو اس نے شیطان کو خود سے نا امید کر لیا ہے. تو یہ صدقہ نکالا کرو، تمہارے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صدقے سے یہ مت سوچئے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ نکالیں گے تو قبلہ خود ہم کیا کھائیں گے، صدقہ نکالا تو کچھ ہمارے لیے نہیں بچے گا. اب میں آپ کو اس کی ایک سائنسی مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ برکت ہے. بھائی یہ نلکا ہے، نلکا بند کر دیا تو پانی رواں ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن نلکا کھول دیا، پانی جاتا رہے گا، پیچھے سے پانی آتا رہے گا. تو صدقہ بھی اسی طریقے سے، اگر تم اپنی جیب سے مال نہیں نکالو گے تو یہ تصور نہ کرو کہ پیچھے سے مال آتا رہے گا، یہ جیب والا مال نکالو تاکہ پیچھے سے مال آتا رہے. کثرت صدقہ یعنی جیب سے مال نکالتے رہو، پروردگار عالم کے مستحق بندوں کو تم پروردگار کی خوشنودی کے لیے مال دیتے رہو، روٹیاں دیتے رہو، پیسے دیتے رہو، ضروریات زندگی پوری کرتے رہو تاکہ پروردگار عالم تمہیں اپنے نظر لطف کے حصار میں رکھے. تو لہٰذا تین طریقے امام نے پریکٹیکل تین طریقے بتائے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ توازو اور انکساری، دوسرا طریقہ کثرت استغفار، اور تیسرا طریقہ ہے کثرت صدقہ. یہ تین طریقے سے پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اب یہ بات سنو اور میں مصائب کی وادی میں داخل ہو جاؤں. بھئی یہ صدقہ ہے نا، صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے کو اچھی بات تعلیم کر دی نا، یہ بھی صدقہ شمار ہوتی ہے. سامنے والا مضطرب ہے، سامنے والا پریشان حال ہے، سامنے والا نا امید اور مایوس ہے، اس کے چہرے پر جو تم نے مسکراہٹ ایجاد کر دی نا، مسکراہٹ، یہ مسکراہٹ بھی صدقہ شمار ہوتی ہے. صدقے کا کتنا وسیع مفہوم اسلام عطا کر رہا ہے، صدقے کے مفہوم اور کانسیپٹ کو کتنی وسعت دی جا رہی ہے کہ ایک مومن کو مسکرا دیا، ہنسا دیا، اس کے چہرے پہ تبسم ایجاد ہو گئی، اس کی پریشانی کچھ ثانیوں کے لیے دور برطرف ہو گئی، یہ بھی صدقہ ہے. अब जरा आओ तुम्हें एक और सदके की मेराज दिखाता हूँ। माल का सदका देना कितना हमारे लिए सख्त है, जरा हुसैन के पास आकर देखो, हुसैन ने अपनी औलाद का सदका दिया है। कैसे सदका दिया है? आज सातवीं मुहर्रम है ना, सातवीं मुहर्रम को अशकिया ने फुरात पर पहरे बिठा दिए थे। आज वो दिन है कि जब आज से हुसैन के बच्चे प्यासे रहेंगे। जब घर जाकर ठंडा पानी पियो ना तो बाली सकीना की प्यास को याद करना, इसलिए क्योंकि आज के दिन वो बच्ची अपने चचा से बार बार कहेगी, चचा जान अल अतश अल अतश, चचा मैं बहुत प्यासी हूँ, चचा मैं बहुत प्यासी हूँ। आज से आले मोहम्मद पर पानी बंद हो रहा है, आज से उनके मशकी से खुश होने जा रहे हैं, आज से उनकी खुश्क जबानें खुश्क होठों पर फिर जाएंगी। आज रुको माल अल्लाह, परवरदिगार तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। तुम्हारी आवाज़ें जो है ना वो किसी ज़ईफ़ा माँ की तस्कीन का सबब बनती है। शबे आशूर के अहवाल में यह है कि एक मरतबा हसन का यतीम लाल कासिम हुसैन के पास आता है और हुसैन के पास आकर कहता है कि चचा जान मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम भी शामिल है। हुसैन ने कासिम से कहा, ए कासिम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मौत को कैसा समझते हो? क्या मारिफत भरा जुमला कहा है शहजादे ने? कहा चचा जान मैं मौत को आहला मिनल असल, मैं मौत को शहद से ज़्यादा मीठा समझता हूँ। कहा कासिम, कासिम मौत को शहद से ज़्यादा मीठा समझते हो ना? देखो तुम तो क्या, तुम्हारा जो 6 महीने का भाई है ना अली असगर, वो भी कल शहीद हो जाएगा। फौरन हाशमी जलाल चेहरे पर नमूदार हुआ और कहा चचा जान क्या इतना बता दीजिए क्या अशकिया खैमों में दाखिल हो जाएंगे? क्या अशकिया खैमों में दाखिल हो जाएंगे? यानी हाशिम कासिम को ये तवक्को न थी कि कल अशकिया खैमों में भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन कुर्बान जाए सैयद सज्जाद की गैरत पर जो एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रहा है, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमों में जा रही हैं। कासिम ने कहा चचा जान क्या अशकिया खैमों में आ जाएंगे? कहा नहीं, मैं तुम्हारे भैया अली असगर को खुद मैदान में मक्तल में ले जाऊंगा। जब आशूर का दिन नमूदार हुआ तो ये तुम्हारा शहजादा कासिम बार बार अपने चचा के पास आता और कहता जाता चचा जान मुझे रन में जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे मक्तल में जाने की इजाज़त दीजिए। मेरा मौला कहता कासिम मैं तुझे कैसे भेज दूँ? अरे तू तो मेरे भैया हसन की निशानी है, जब भी मैं अपने भाई हसन को देखना चाहता हूँ मैं तेरी ज़ियारत कर लेता हूँ। कासिम तुझे जाने की कैसे इजाज़त दे दूँ? कासिम तू तो मेरे भैया हसन की निशानी है। जब कासिम ने नाउम्मीदी देखी ना तो पुश्ते खैमा पर आकर बैठ गए। जब नाउम्मीदी से मायूसी के साथ अपने सर को अपने पैर से लगाकर बैठे ना तो माँ उम्मे फरवा आई, कहा कि कासिम आखिर इतना नाउम्मीद क्यों नज़र आ रहे हो, इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो 13 बरस के उस नौजवान ने कहा है अम्मा जान मुझे मेरा चचा जंग की इजाज़त नहीं देता, मेरा चचा मुझे जंग की इजाज़त नहीं देता। माँ उम्मे फरवा ने कहा है मेरे बेटे कासिम क्या तुझे याद नहीं है कि तेरे बाबा ने एक तावीज़ बांधा था? जैसे ही तावीज को याद किया भतीजे हासिम के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जैसे ही तावीज रुके को खोला तो उसमें लिखा था है मेरे भाई हुसैन तुझ पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तेरी मदद के लिए ना होऊंगा, जब ऐसा वक्त आए तो कासिम को मेरी कुर्बानी कबूल करना, कासिम को मेरी जानिब से कुर्बानी कबूल करना। कासिम ने वो रुका लिया, वो तावीज लिया, बड़े खुशहाली के साथ बड़ी खुशी और तरावत के साथ अपने चचा के पास आए। चचा ने जब मुस्कुराहट देखी ना तो चचा समझ गए कि भतीजा सिफारिश लाया है, भतीजा सिफारिश लाया है। एक मर्तबा कासिम के गले लगे और मक्तल में लिखा है कि दोनों चचा भतीजे इतना जारो कतार रोए, इतना जारो कतार रोए कि दोनों चचा भतीजे बेहोश हो गए।
जब किसी पर कशी आ जाए तो उसे पानी के छिड़काव से बेदार किया जाता है। अरे हाय रे मजलूमियत आले मोहम्मद के जिनके पास दो बूंद पानी के नहीं है। अजरकुम अल्लाह परवरदिगार हुसैन और आले हुसैन के गम के सिवा कोई गम ना दे जिंदगी में। परवरदिगार आले मोहम्मद के गम के सिवा कोई गम ना दे। जब गशी से बेदार हुए ना तो कासिम रुखसत हुए। एक पहलवान आया अजरक शामी, कासिम ने उसे दहेज तेज किया। अजरक शामी के तीन बच्चे आए, तीन पहलवान आए, कासिम ने उन्हें भी दहेज तेज किया। बार बार बताते जाते कि मैं हाशिमी जवान हूँ, बार बार बताते जाते कि मैं लाल हूँ, बार बार बताते जाते कि मैं अब्बास का भतीजा हूँ, बार बार बताते जाते कि मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। रावी कहता है कि जब कासिम आए ना मक्तल तो हमने ये देखा कि एक चांद जैसा चेहरा था, एक सर पर अमामा पहना था और जूतों की तस्मे खुली हुई थी और गरेबान चाक था। अरब का दस्तूर जानते हो क्या है? अरब का दस्तूर यह है कि जब कोई यतीम मक्तल आता है तो उसके गरेबान को छाप कर दिया जाता है, उसके गरेबान को फाड़ दिया जाता है। कासिम इस हाल में मक्तल आए, खूब जंग की, अजरक को पछाड़ा, अजरक के बच्चों को पछाड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते बेचारे साद ने कहा, कहे अशकिया ये हसन का लाल है, इसे एक एक जाकर जंग ना करो, चारों जानिब से घेर कर इस पर हमला करो। जब चारों जानिब से हमला किया, एक लईन ने ऐसा वार किया, कासिम से रावार पे संभला ना गया। जैसे ही घेरे आए मेरे चचा मेरी मदद के लिए आइए। एक जानिब से हुसैन बढ़े, एक जानिब से अब्बास बढ़े। जब फौजों ने अब्बास को आते हुए देखा, जब फौजों ने हुसैन को आते हुए देखा तो इधर की फौज उधर दौड़ी, उधर की फौज इधर दौड़ी, हर टापों पर कासिम कहते जाते आए चचा,